ایک مشہور واقعہ ہے اور مقاتل اور اسی طرح مختلف روایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یوم عاشور جب شمر نے اپنا پیر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر رکھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس حالت میں فرمایا کہ اے شمر سوچ لو کہاں پہ پیر رکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے اس جگہ کو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سکھا دیا کہ سخت ترین وقت میں بھی بدترین آدمی تمہارے سامنے ہو پہلے نرم زبان سے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ پروگرام صوب زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو پروگرام صوب زندگی میں۔
میں بھی حسن آپ کی خدمت سلام عرض کرتی ہوں اور اپنے پیارے اور عزیز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ اس امید سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک پیاری سی خوبصورت سی صبح کا آغاز ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کر چکے ہوں گے۔ جی حسن،
انشاءاللہ آج ہم نے بہت ساری اچھی اور مفید چیزیں ناظرین کے لیے تیار کی ہیں۔ ایک تو میں جو چیز بتانا ضرور چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کا پروگرام اس حوالے سے ضرور دیکھیں کہ غلط تربیت یا بچوں کی غلط کہہ سکتے ہیں کہ ان کی چاہتیں پوری کرنا کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے انڈونیشیا کا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ بتائیں گے استاد فرشیان کے حوالے سے، ان کے بارے میں کئی چیزیں ابھی حال میں ہی شائع ہوئی ہیں تو وہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بتاؤں گا۔ آج بہت ہی دلچسپ چیزیں بہرحال ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ ہم سے آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیس بک تو ایک راستہ ہے، اور ذریعے بھی ہیں، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ہم سے رابطہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی، اور 6:36 ہو رہے ہیں، تقریباً 37 ہونے والے ہیں بس چند سیکنڈ میں۔ ایک چیز اور میں ضرور بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم سے رابطے کے لیے آپ صرف یعنی جو پروگرام کے دوران آپ کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، اس کے بعد بھی آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور ہم لوگ ای میلز اور آپ کے کمنٹس کا اس وقت بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ایک چیز۔ اور
حسن، یہاں پہ سب سے پہلے جو کہ کل میں نے فیس بک پیج چیک کیا تھا، ایم خان لغاری صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ایک بہت پرماننٹ اور ایک اچھے ویور ہیں، ہمیشہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ جو ہم نے ان کو کم کی جو کل جو کلپ دیکھی تھی، ویڈیو کلپ، ان کو بہت پسند آئی، انہوں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا، میں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یہاں پہ۔ اور ہفتے کا موضوع چل رہا ہے ہمارا آزادی و حریت پسندی، آج آخری دن ہے، تو میں نے کل اس بارے میں انٹرنیٹ پہ ایک چیز پڑھی اور بہت ایک طرح سے مجھے اچھی لگی۔ اگر آپ کو آزادی چاہیے، آزادی بنا صبر کے بے معنی ہے، یعنی بالکل کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہم آزادی اپنے لیے شاید چاہیں لیکن جب دوسرے کے لیے آزادی کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑے سے صبر میں تھوڑی کمی لے آتے ہیں اپنے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اگر یعنی آج کل کے بھی بالکل یہ جو ماڈرن دور جو چل رہا ہے اس میں بھی اگر آپ جا کے مختلف ڈکشنریز پلٹیں تو لفظ آزادی کے سامنے وہ چیز آتی ہے کہ یعنی آپ کے حدود،
بالکل،
جو یعنی دوسروں کے حدود کو آپ یعنی اس پہ نہ چلے جائیں، اس کو نہ کچل دیں، وہاں تک آپ کی آزادی اس کو مانا جائے گا۔ اور اس میں یعنی ہر لحاظ سے اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں پر دوسروں کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ یعنی بقول آپ کے کہ ڈکٹیٹر بھی بہت آزاد لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ آزادی کو صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔
جی یہ تو ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی اور ایک میں نے کوٹیشن پڑھی تھی کہ میری آزادی تمہاری آزادی کے بنا بھی کچھ نہیں ہے، دونوں طرف کو آزاد ہونا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ خود آزاد فکر یا آزاد سوچ رکھتے ہیں تو دوسرے کو بھی اتنا ہی حق دیجیے جتنا آپ اپنے لیے سوچتے ہیں۔
بالکل، اس حریت پسندی کو اگر ہم اپنے فکر تک محدود رکھیں گے تو یقیناً ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر واقعی کربلا میں دیکھا جائے جن لوگوں نے آزادی کو محدود کر دیا وہ یزیدی تھے، اور جن لوگوں نے آزادی کو اپنے لیے صرف نہیں چاہا بلکہ اس حریت پسندی کو پورے کہہ سکتے ہیں 72 لوگوں میں بانٹ دیا، 72 اصحاب میں بانٹ دیا، وہ صرف اور صرف امام حسین کے لشکر میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔
جی بہت خوبصورت بات۔ جی اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور سبھی آپ نے بتایا کہ واقعہ کربلا ایک طرح سے ہمیں آزادی کا درس بھی دیتی ہے، اور کس طرح اپنے آزادی کا یعنی صحیح طور پہ اپنے حق سے آپ یعنی دفاع کریں یہاں پہ، اس بات کا بھی ہمیں درس دیتی ہے۔ جی
بالکل، یقیناً۔ اور بہرحال ناظرین، اس سلسلے میں ہم لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی، اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوں اس سلسلے میں وہ آپ ضرور بتائیے گا۔ جیسے ایک دو دن پہلے آپ نے تصویر دیکھی ہوگی فیس بک پر کہ हम लोगों के नए कुछ हिस्से शुरू होने वाले हैं इसी हवाले से कि जो नए सेगमेंट्स जो बहरहाल मुख्तलिफ हो सकते हैं, इससे पहले हुआ करते थे, इंशाल्लाह फिर से हम लोग उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो उसका उसकी एक झलक आपने यकीनन देखी होगी
जी
फेसबुक पर, आपने भी शायद
जी
देखी
जी
हो।
जरूर
तो बहरहाल इस सिलसिले में अगर आप कोई हमारे साथ तआवुन भी कर सकते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। ईरान में मुकीम है या हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई ख़ास काम आपने किया है तो यकीनन हम लोगों को खुशी होगी। एक और काम जो मैं इस मुहर्रम उल हराम और सफ़र के दौरान आपसे ज़रूर चाहूँगा, अगर आपके तरफ, आपके इलाके में, आपके गाँव में, आपके शहर में कोई ख़ास रस्म होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के सिलसिले में, उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। अगर कोई तस्वीर आप ले सकते हैं तो वो ज़रूर बताएं। हम लोगों को बहुत सारी तस्वीरें मौसूल हुई थी करगिल से, वो बहरहाल मुख्तलिफ फ़नी वजूहात की वजह से हम लोग नहीं दिखा सके। एक वक्त में आप भेजी गई थी, बाद में नाराज़ भी हुए थे थोड़े हमारे भाई वहाँ पर, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त फिर से उनसे माजरत खाऊँ, और अगर फिर से वो भेजना चाहें तो यकीनन हम लोग उसकी पज़ीराई करेंगे। और
जी
एक और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो हमारी आवाज़ की वजह से, बहरहाल यहाँ पर थोड़ी सर्दी गर्मी,
जी
गर्मी तो
हम
नहीं हो रही,
सबको
सर्दी
यहाँ
हो रही
पे
है।
जी आज यहाँ पे सुबह बड़ा खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन हमें यहाँ पे सर्दी लग गई है बुरी
बिल्कुल
तरह,
हाँ,
बिल्कुल
तो सर्दी लग गई, बारिश बारिश भी बहुत कल से हो रही है
जी
तकरीबन तेहरान शहर में और बहुत सारे शहरों में ईरान के, तो मौसम इस लिहाज से बहुत
यहाँ
ज़बरदस्त
से
हो रहा
हमने
है।
आपको मौसम की रिपोर्ट भी दे दी
बिल्कुल
जी नाज़रीन को
मौसम की रिपोर्ट भी हम लोगों ने बता दी, और मौसम मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए
जी
इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उस्मान खालिक,
जी
और हमारे
कुछ
साथ
खाने
रहिएगा,
पीने की
एक
बातें
प्रोग्राम
करेंगे
देखते हैं साथ में, और
ज़रूर
गज़ाइत के हवाले से गुफ्तगू होगी उनसे इंशाल्लाह। वैसे बताता चलूँ, आखिरी दफ़ा जो मैंने ये जगह देखी वो मुकम्मल हो चुकी थी, तो इन्हीं रिपोर्ट आप जो देख रहे हैं थोड़ी पुरानी है। तो जैसा कि आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर उस्मान खालिक ने हमें ज्वाइन किया है, तो चलते उनके पास बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, मैं आपकी खिदमत में खुश आमदीद कहता हूँ।
बहुत शुक्रिया
वालेकुम
हसन
अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत
वालेकुम
बहुत
अस्सलाम।
खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आज आपने जो मौजू चुना है प्रोबायोटिक दही के बारे में, सबसे पहला सवाल तो यही होगा प्रोबायोटिक दही है क्या और आम दही से इसका क्या फ़र्क है?
आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं, लेकिन असल में हमारे पिछले दो प्रोग्राम्स में तसलसल के साथ दही के ऊपर गुफ्तगू के बावजूद जो है वो बहुत सारी चीज़ें रह गईं। एक दो
जी
चीज़ें मैं फ़वाद के तौर पर दही की मज़ीद
जी
बताना
बिल्कुल
चाहूँगा। पहले मैंने बताया था काफ़ी बीमारियों के अंदर उसका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी फाइंड आउट किया गया है कि ना सिर्फ प्रिवेंशन बल्कि इवन के ट्रीटमेंट में जो है वो ये चीज़ इस्तेमाल होती है।
जी
जहाँ तक दो फवायद हैं आम ज़िंदगी में, आपने एक सवाल भी मुझसे किया था उसका भी जवाब रह गया
जी
कि खाने के साथ आया हमें दही खानी
जी
चाहिए, नहीं
बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल खानी चाहिए, जितनी हो सके उतनी खानी चाहिए।
जी
उसका फ़ायदा ये है कि दही भी दूध की तरह एक मुकम्मल ग़िज़ा है।
अच्छा
दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपको जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम निज़ाम है उसकी लेयरिंग बड़े अच्छे तरीके से करती है, लिहाजा
जी
आपकी फ़ूड के अंदर अगर कोई आप ये समझे कि मुजर चीज़ें मौजूद हैं तो
जी
ये उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देती।
अच्छा
नंबर दो चीज़ ये है कि ये उस जो भी ग़िज़ा है उसके बेहतरीन बेहतरीन इन्हज़ाम का जो है वो सामान मुहैया
जी
करती है, और इसके अलावा ये आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो
जी
बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम है आपकी बॉडी में, उसको ये मजबूत करती है।
डॉक्टर साहब, अभी आप जो कि दही के बारे में बात कर रहे हैं, एक सवाल मैं यहाँ पर शायद नाज़रीन के जहन में भी ये सवाल आया होगा, बच्चों को अक्सर वो हो जाता है फूड पॉइजनिंग
जी
या
जी
उल्टियाँ आती है, कहते हैं दही का इस्तेमाल उस पर सही रहता है?
उसमें नहीं, उसमें आप बेहतर यही रहेगा कि न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर हज़रात, लेकिन डॉक्टर्स को अमूमी तौर पर इस चीज़ का नहीं पता होता,
जी
न्यूट्रिशनिस्ट हज़रात को वो सिचुएशन देख करके क्या चीज़ जो है वो वॉमिटिंग या इस किस्म की फूड पॉइजनिंग कॉज कर रही है।
अच्छा
अमूमी तौर पर डायरिया में,
जी और
और
डायरिया में जी
जी डायरिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन और क्लिनिकल सेटअप में एंटीबायोटिक्स बहुत अरसे जो इस्तेमाल होती हैं उसकी वजह से भी डायरिया एज अ साइड इफेक्ट पैदा होता है,
अच्छा
उसके भी ट्रीटमेंट के लिए
दही
दही इस्तेमाल किया जाता है।
सही
दूसरी चीज़ ये कि आपने ख़ास तौर पर हमारे नौजवान तबके में देखा होगा, उन्हें क्रेज़ होता है कि भाई बॉडी बिल्डिंग का,
जी
और उसके लिए वो पता नहीं लाखों तो मैं नहीं कहूँगा हज़ारों रुपए जो है वो साल के
अच्छा
हिसाब से ज़रूर खर्च करते हैं वो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह खरीदने
सप्लीमेंट्स
में।
वगैरह जो
जी
लेते
बिल्कुल।
हैं जी
इसके अलावा खुराक भी जो है वो स्पेशल किस्म की लेकर आते हैं, कच्चे अंडे खाने, ये वो फलाना
सही
ढमकाना, तो उसमें मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो जो प्रोटीन पाउडर लेकर आते हैं उससे कहीं बेहतर जो है वो दही है। वजूहात उसकी ये हैं कि इसके अंदर फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं
जी
और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए और बेहतरीन जो है वो मतलब कि आप एक्सरसाइज के बाद जो है वो उमूमी तौर पर रिकमेंड किया जाता है कि आप एक्सरसाइज के बाद जो है वो दही इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि इसमें प्रोटीन्स जो है वो काफ़ी नहीं है, उमूमी तौर पर 4 से 5 ग्राम होते हैं आधा किलो दही में, तो उसमें आप ऐसा कीजिए कि हर दफ़ा दही खाने में आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करके खाइए।
अच्छा,
उससे आप मज़ीद फ़ायदा ये होगा कि एक तो प्रोटीन्स जो है ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा ये है कि उसमें पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए वो भी मौजूद होते हैं।
अच्छा,
तो ये उस आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर से 1,000 से 10,000 गुना जो है वो कहीं बेहतर चीज़
एक नेचुरल सोर्स है। बिल्कुल
बिल्कुल, और ये आपको बॉडी को जो है वो एक मेंटेन एक नॉर्मल शेप में रखता है बजाय इसके कि आपको फुला दे।
अच्छा ठीक, मेंटेन रखता है।
प्रोबायोटिक की तरफ आते हैं, दो इकसाम दो इकसाम गज़ाओं की आजकल जो है वो मार्केट में काफ़ी इन है, लोगों ने जो थोड़ा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के मुतल्लिक कोशिश रहते हैं उनको इस चीज़ का इल्म होगा। एक टर्म है प्रीबायोटिक, एक प्रोबायोटिक, दोनों का फ़र्क मैं बताता चलूँ। प्रीबायोटिक ऐसी तमाम गज़ाएँ कहलाती हैं जो कि आपके गट या इंटेस्टिन लार्ज इंटेस्टिन में जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं उनकी खुराक का जो है वो बंदोबस्त करें। आपको मैंने पिछले दफ़ा बताया था कि हमारे लार्ज इंटेस्टिन में तकरीबन आप ये समझें कि 6 से 10 अरब बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो वहाँ पर कोई बीमारी नहीं क्रिएट करते, वो हमारे फ़ायदे के लिए मौजूद हैं। इम्यून सिस्टम, आप ये समझे कि हमारे इम्यूनिटी से प्रॉब्लम, हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, एलर्जीज इवन के यहाँ तक, वो सब की सब वहाँ से आती हैं। अगर वो बैक्टीरियाज जो है वो खुशबाश हैं, उनको खाने पीने को सब कुछ सही मिल रहा है, तो वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रखते हैं। अगर उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा या आप खुराक इस किस्म की खा रहे हैं कि वो उनको मार रही है या उनको फंक्शन सही तौर पर करने दे रही, बिल्कुल ये आपकी तकरीबन 85% बीमारियाँ और सारी की सारी इन्फेक्शियस बीमारियों का सबब यहाँ से बनता है, खासतौर पर एलर्जीज। जिस तरह के आपने आजकल देखा होगा कि बच्चों में जूँ हम एडवांस होते जा रहे हैं, बच्चों में, पैदा होने वाले बच्चों में और इवन के छोटे बच्चों में और फिर पूरी उम्र के लिए एलर्जीज जो है वो बढ़ती जा रही है। पुराने दौर में आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसकी तमाम वजूहात यही हैं। आखिर में आप मुझे याद दिलाइएगा इसके मुतल्लिक मैं एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अहम बात है वो मैं बताऊँगा। तो ये उन बैक्टीरियाज की खुराक
प्रीबायोटिक आपने बताया।
जी प्रीबायोटिक,
ठीक।
उन बैक्टीरियाज की खुराक जो है आप प्रोवाइड करें और जो कि जाहिर सी बात है वो खुराक लेंगे वो फलेंगे फूलेंगे आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा काम करेंगे, अपना भी जो है वो थोड़ा फ़ायदा करेंगे।
जी
दूसरी शय होती है प्रोबायोटिक।
जी
तमाम वो गज़ाएँ जिसके अंदर लाइव बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज और जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज जी खुद मौजूद हो।
अच्छा,
या डाले जाते हैं।
अच्छा,
आजकल जो है वो डाले जाते हैं।
ठीक,
कुदरती गज़ाओं में ये मौजूद होते हैं। बाज़ गज़ाओं के मैं नाम ले लेता हूँ, एक ख़ास किस्म का जो है वो सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं उसको, उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा बाज़ गज़ाओं मिसाल के तौर पर अदरक में जो है वो प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं। इसके अलावा लहसुन में, इसके अलावा जो हमारे यहाँ आपको मालूम है पाकिस्तान इंडिया में जो है वो अचार बनते हैं
जी,
इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी तादाद जो है वो मौजूद होती है
प्रोबायोटिक की
जी,
जो बता
बच्चों को खिलाने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये।
सही।
और इसके अलावा दही जो है इसके अंदर भी प्रोबायोटिक मौजूद है। अमूमी तौर पर कुदरती तौर पर उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारी मार्केट में दही आ रही है जिस तरह मैंने पहले फ़र्क किया कि वो जानवर जो कि घास के ऊपर पले हुए हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, उनकी दही के अंदर अच्छे खासे जो है वो बैक्टीरियाज जो है वो मौजूद
है।
लेकिन जो हमारी ये पैस्चराइजेशन होकर और इस तमाम प्रोसेस के थ्रू गुजर कर आती हैं वो कुछ इतने शदीद किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं कि उसके अंदर बैक्टीरिया तो रहना अपनी जगह, दूध के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं
तो वो भी जो है
वो डिफॉर्म हो जाते हैं।
ठीक।
और जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं बायोकेमिस्ट्री का या मेडिसिन से रिलेटेड जो हजरात होंगे वो इस चीज़ को जानेंगे कि प्रोटीन एक दफ़ा डिफॉर्म हो जाए तो आप नो मैटर कितनी खा रहे हैं
सही।
वो आपको कोई फ़ायदा नहीं,
वो असरअंदाज ही नहीं होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हमारे आजकल के दूध दही वगैरह वो फवायद पैदा नहीं करते जो कि पिछले ज़माने में असल
जो खालिस दूध जो दे रहा है।
बिल्कुल
ठीक।
तो ये चीज़ें हैं अमूमी तौर पर। इसकी लेबलिंग जो है आजकल मार्केट में आती तो हैं दही वगैरह प्रोबायोटिक के नाम से, लेकिन अभी तक इसके चूंकि नई नई चीज़ है अभी तक इसके कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए। बाज़ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो LAC कहलाते हैं, LAC के नाम से लेबल होता है, लाइव एक्टिव कल्चर्स। बाज़ में जो है वो CFUs अभी जो चंद कंट्रीज ने स्टैंडर्ड के तौर पर एक्सेप्ट किया है वो सी एफ यूज के नाम से, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। बस जगह पर दही के ऊपर एक्टिव कल्चर्स या एक्टिव बैक्टीरिया भी लिखा जाता है, लोग डर जाते हैं कि भाई ये तो
बैक्टीरिया वाली दही,
ये कैसी कंपनी है कि भाई ये इन्होंने जो है वो बैक्टीरिया बीच में डाले हुए, क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि बैक्टीरिया जो है वो
बीमार करने के लिए होता है।
तो उस चीज को जो है वो अवॉइड किया जाता है, और इसलिए ये सी एफ यूज वगैरह और दूसरी चीजें लिखी जाती है। आमतौर पर जो दही बनता है गवालों के दूध वगैरह से, जो आजकल हमें अगर हम कंपनी से नहीं लेते तो उसमें तकरीबन 1 ग्राम के अंदर आप ये समझे कि 1,000 से 10,000 बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जो कंपनीज ऐड करती हैं बैक्टीरिया, या आम जो हमारा जो असल गाय का जो दूध है, जो कुदरती गजा के, जी बिल्कुल, उनके दही के अंदर 1 ग्राम के अंदर तकरीबन 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं।
ठीक।
और आप फिर खुद सोच लें कि आप दिन में जो है वो जितना दही खा रहे हैं और वो प्रोबायोटिक हो, तो वो आपके कितने जो है वो फायदा मंद होगा।
डॉक्टर साहब, प्रोबायोटिक दही या आम दही कोई फर्क है इनका आपस में या नहीं, या दोनों एक ही?
फर्क अमूमी तौर पर यही है कि दही से जो आम दही है उसमें कुदरती तो है नहीं, या मैं आम दही से मेरी मुराद वही होती है जो आपको मार्केट्स में अवेलेबल है। आम दही में ये है कि आपको जो ये बैक्टीरिया वगैरह से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलते,
जो वो प्रोसेस के दौरान खत्म हो जाते हैं।
बिल्कुल। लेकिन प्रोबायोटिक दही में ये है कि चूंकि इसमें ये चीजें ऐड की जाती हैं, लिहाजा आपके गट के अंदर, इन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उनकी एक तो आबादी में भी इजाफा होता है, वहां पर उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा उनका एक और फंक्शन ये है कि आपकी जो गजा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हजम नहीं हो पाती, ये बैक्टीरियाज उनको तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि हमारे निज़ाम में ऐसे एंजाइम्स मौजूद नहीं है जो उन फूड कंपोनेंट्स को तोड़ सकें, लेकिन इन बैक्टीरियाज के पास मौजूद होते हैं। ये उन फूड कंपोनेंट्स को भी तोड़ते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हमें देते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो अपनी खुराक के लिए जो है वो रखते हैं और ये फलते फूलते हैं। फवाइद इसके बहुत हैं,
यानी ये बैक्टीरियाज के अलावा या लार्ज इंटेस्टाइन में जो होते हैं, इसके अलावा भी कोई और फवाइद जिस्मानी तौर पे हमको पड़ता है प्रोबायोटिक दही से या नहीं?
जी, असल में उसमें मुझे फिर इस चीज की तफसील में जाना पड़ेगा कि ये बैक्टीरियाज वहाँ क्या क्या किरदार अदा करते हैं।
अच्छा,
क्योंकि कहने को ये सिर्फ बैक्टीरियाज हैं, लेकिन आखिर में जो मैं बात करूंगा, जो आप मुझे याद दिलाएंगी, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कितनी अहम चीज है। अमूमी तौर पर जो लेबलिंग के ऊपर अगर ये चीज़ आती है, अगर आपने दही को लेबल्स के तौर पर देखना हो कि मार्केट में आपको दही अवेलेबल है और उसको आपने देखना हो कि ये आम दही है या वो प्रोबायोटिक है, तो बाज़ कंट्रीज में या बाज़ कंपनीज जो है वो उसके ऊपर लिखती हैं प्रोबायोटिक, और बाज़ जगहों पर इस चीज़ को मतलब के नज़रअंदाज किया जाता है, और वो लोग उन कंपनीज का ख्याल ये होता है कि आम आवाम जो है वो न्यूट्रिशन के हिसाब से काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो वो उसमें सी एफ यूज लिखते हैं और उसके बाद कुछ नंबर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 10^5 और 10^6, मतलब के सी एफ यूज मीन्स इतने लाइव बैक्टीरियाज मौजूद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक है।
जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, यहाँ तक तो हमने प्रोबायोटिक दही के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हमें। हमें चलना है हसन भाई के पास। जी हसन भाई,
मैं भी बहुत गौर से सुन रहा था और बहुत ज़बरदस्त मालूमात डॉक्टर साहब ने फराहम की। नाज़रीन, गुफ्तगु जारी रहेगी, चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 7:03 हो रहे हैं और आप प्रोग्राम सुपर ज़िंदगी मुलायजा फरमा रहे हैं सहर आलमी नेटवर्क के तेहरान स्टूडियो से। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और वो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
बहुत शुक्रिया हसन, मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, नाज़रीन हम प्रोबायोटिक दही के फ़वाद के बारे में बात करते हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब,
दही के फ़वाद और प्रोबायोटिक दही के फ़वाद ऑलमोस्ट सेम ही हैं, इसमें जो मेन फ़र्क आता है वो बैक्टीरियाज का है। बैक्टीरियाज की आप अहमियत का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि आपको याद होगा हमारा पहला प्रोग्राम, मैंने उसमें बड़ा जोर दिया था माओ की सेहत के मुतल्लिक और लड़कियां जिनकी न्यूट्रिशन का जो है वो बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम लोग ख़ास तौर पर गांव में हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और हम कहते हैं भाई लड़कों को खाने को दो। ट्रेंड बदलता जा रहा है जो एजुकेशन आती जा रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मौजूद हैं और कुछ पढ़े लिखे घरानों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें एक चीज़ जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए कि आज की जो लड़की है वो कल की माँ है, और माएँ सेहतमंद होगी तो वो एक सेहतमंद नेशन को,
जी,
एक
एक
कौम
घराना,
को,
एक कौम,
बिल्कुल
बिल्कुल।
घराने मिलकर चूंकि कौम बनते हैं।
जी
आप ये देखिए कि हाल ही में इस चीज़ को डिस्कवर किया गया है कि बच्चा जब माँ हमल से होता है, माँ जब हमल से होती है और बच्चा पेट में मौजूद होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह नामी कोई चीज़ नहीं होती।
अच्छा
जो रहम है वहाँ का
जी
वो टोटली स्टेराइल होता है, और वो इस चीज़ की गारंटी भी देता है कि वहाँ पर किसी किस्म का बैक्टीरिया या वायरस वगैरह जो है वो एंटर ना
मौजूद
होने
नहीं है।
पाए, मतलब कि
ठीक
उस टोटल स्टेरिलिटी होती है।
ठीक
जिस वक्त बच्चा बर्थ के ना पैदाइश होती है और वो बर्थ के नाल से गुजरता है, उसी वक्त बच्चा जो है वो माँ की जो बर्थ के नाल में बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं
जी
उनको
इनहेल करता है।
इनहेल करता है।
ठीक
इनहेल नहीं मतलब कि बजरिया मुंह जो है
हाँ
वो,
ले अंदर लेता है। ठीक
बिल्कुल वो जो बैक्टीरियाज होते हैं ये असल में उसकी इंटेस्टिन के वो नेचुरल बैक्टीरिया बनते हैं, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा
अच्छा
था। और आप इस चीज़ से देखिए कि माँ के वो जो बैक्टीरियाज होंगे,
जी
अगर माँ की न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर माँ इस बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल करती है, ख़ास तौर पे लड़कियों के मामले में
जी
एंटीबायोटिक्स के मामले में बहुत मुहतात रहना पड़ता है डॉक्टर्स को, लेकिन आम प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं देखी गई। इवन कि
जी
नज़ला ज़ुकाम होता है तो एंटीबायोटिक लिख कर दे दी
बिल्कुल
जाती है, वो ना सिर्फ जो है वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पैदा करती हैं बैक्टीरियाज की, बल्कि वहाँ पर डेंजरस किस्म के बैक्टीरियाज पैदा करती हैं।
अच्छा
वो जब बच्चे के वो गट का हिस्सा बनते हैं, तो आप ये देखें कि हमारी जितनी एलर्जीज हैं आज की
जी
सारी की सारी, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस, मिसाल के तौर पर आपने नाम सुना होगा ऑटिज़म,
जी
जिसमें बच्चा 4-5 साल तक जो है वो बोल चाल नहीं सकता,
बिल्कुल
सोशली उसको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा तकरीबन तमाम साइकियाट्रिक डिजीज़ेस
जी
उस बैक्टीरिया से आती हैं।
सही
अब ये माँ की सारी न्यूट्रिशन पर है कि माँ जिस किस्म की न्यूट्रिशन से
न्यूट्रिशन ले
गुजरी
रही
है,
है।
उसने जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारी, या उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी कन्वेंशनल मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिसिन, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, जितनी
जी
ज़्यादा इस्तेमाल की होंगी उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
ठीक
आपकी ये बैक्टीरियाज जो है वो बेसिकली आपको वहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आपको इस किस्म की बीमारियाँ नहीं होंगी, आपका
जी
इम्यून सिस्टम जो है वो सही रहता है बच्चे के अंदर।
सही
इसके अलावा ये तमाम किस्म की बीमारियाँ, एलर्जीज़ और ये जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया,
जी
तमाम ऑलमोस्ट तमाम जो है वो
मुश्किलात
साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिजीज़
जी
वो नहीं होती। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी
कितनी
अहम चीज़ है माँ की
जी।
न्यूट्रिशन।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें चलना है हसन भाई के पास और देखना है कि आज क्या ताज़ी खबरें हमारे लिए लेके आए
बहुत
हैं।
बहुत शुक्रिया रुबा बहन, और हमने भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें, बहरहाल उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उनमें से छंटाई करनी पड़ती है फिर, ताकि आपके खिदमत में हम पेश कर सकें। तो एक बहुत ही बहरहाल दिलचस्प चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो इस हवाले से है कि आपने फ़िलहाल इस तस्वीर को छोड़ दीजिए, और एक आपने बहुत ही मशहूर, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी वो पेंटिंग, असरे आशूर के नाम से बहुत मशहूर पेंटिंग है, और उस्ताद फर्शियान की बनाई हुई, जो इन्होंने तकरीबन आज से 35 साल पहले बनाई थी। और इसकी ख़ास बात यह है कि अब उसमें जो यानी आर्ट के हट के एक आम आदमी के निगाह से अगर देखा जाए कि इसमें हर चीज़ झुकी हुई है, और वो असर आशूर का जो मंज़र है वो पूरे तौर से सामने आता है। उस्ताद फर्शियान के बारे में हम आपको बताते चलें कि उस्ताद फर्शियान बहुत ही बड़े ईरान के, माफ़ कीजिएगा, आर्टिस्ट हैं, और इस हवाले से कि उन्होंने मुख्तलिफ जो पेंटिंग्स अपनी जगह पर कई उन्होंने ज़रीए डिज़ाइन की हैं, और सबसे पहला कह सकते हैं ऑफ़र उनको मिला है मुख्तलिफ चीज़ों में, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ साथ, लेकिन इनकी ख़ास चीज़ ये रही कि जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो हरम में मौजूद जो ज़री है उनकी कब्र मुबारक पर, वहाँ पर जो उसके बारे में जो चीज़ बताई गई वो इन्होंने कही कि जब इनको दिया गया था उसके डिज़ाइन का, तो कई और लोगों को दिया गया, वो लोग ख़ुद इनके पास आए कि हम इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, और इसके बारे में ये बता रहे थे कि उनके हाथ में एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया था, एक चोट लग गई थी उनको जर्मनी में, और जैसे ही उन्होंने इस ज़रीह पर उसकी डिज़ाइनिंग पर काम शुरू किया तो उसी वक्त से वो दर्द मुकम्मल तौर से ख़त्म हो गया, और उसके बाद ना महसूस हुआ यानी, और ना काम करते वक्त, तकरीबन ये तो हो गई 10 साल पहले की बात जब वो ज़री तैयार हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में मौजूद ज़री भी उन्होंने डिज़ाइन किए हाल ही में, इसके बारे में उन्होंने जो चीज़ बताई है, आप यहाँ पे तरबियत और माओ के किरदार का आप देख लीजिए किस हद तक अहमियत रखती है, फिर उसके बाद दूसरे मौजू की तरफ चलेंगे। जो चीज़ उन्होंने कही कि वो उनकी वालदा यानी फर्शियान साहब की वालदा जो हैं वो ख़ुद बहुत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखती थी, और जैसे ही उनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता था उनके आंसू बहने लगते थे। तो ये चीज़ मुंतकिल हुई है ख़ुद उस्ताद फर्शियान में भी, उन्होंने कहा कि हम इसी माहौल में मेरी परवरिश हुई है तो मैं कैसे ये काम न करता। और ये याद रखिए कि उन्होंने तमाम इस डिज़ाइनिंग के लिए चाहे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हो चाहे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हो एक पैसा भी नहीं लिया, बल्कि जो हदिया उनको पेश किया गया था वो उन्होंने इमाम हुसैन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो वहाँ पे बहुत बड़ा फंड है और वहाँ पे बहुत बड़ा म्यूज़ियम है वो सारे रकम जो है सारी रकम जो है वो वापस कर दी। तो ये याद रखिए तरबियत का किस हद तक असर हो सकता है और कहाँ तक असर हो सकता है। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तरबियत के दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक इंडोनेशियन बच्चा है, इस वक्त 4 साल का है और नाम है अर्दी रिजाल। और इनकी ख़ास बात ये थी कि 2 साल की उम्र से हर रोज़ 40 सिगरेट पिया करते थे, तो इसमें जो नुकसानात उनको हुए और मुश्किलों से छुड़ाई गई, जब वो सिगरेट छुड़ाई गई तो माँ ज़िद जो है पूरी करने के लिए उन्होंने जंक फूड की आदत उनको दिला दी, तो वो मुकम्मल तौर से फिर जंक फूड खाने लगे और उसका जो नुकसान उनको पहुँचने लगा वो ये है कि 16 पाउंड यानी तकरीबन 7 किलो 7-8 किलो बल्कि वज़न जो है उनका ज़्यादा है, और इसमें दूसरे नुकसानात पहुंच सकते हैं। और खुसूसन डॉक्टर्स ने कहा है जो शुरू में निकोटीन बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई है उसकी वजह से शायद आगे हार्मोन्स में ऐसी तब्दीलियां आ गई हों कि वापस उनका पलटना यानी बदन का वापस पलटना आम हालत में बहुत मुश्किल हो जाए। तो ज़िद अगर पूरी करनी है तो सही तौर से पूरी करें और सोच समझ के बच्चों की ज़िद पूरी करें। चलते हैं रुबाब बहन के पास।
बहुत शुक्रिया हसन भाई। नाजिन हमारे साथी हमें बता रहे हैं कि हमारे पास फ़िलहाल वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पर डॉक्टर उस्मान खालिक का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मैं आपसे खुदाफिसी करूँगी। और फिर नाजिन हमें जाना है देखना एक वीडियो क्लिप और फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं जाइएगा मत जी। अगर कैमरा मेरे पे आ जाए तो मैं नाजरीन को बोलूं,
गुफ्तगू कर रहा हूं फिलहाल
जी
रुबा मैम से
जी। नाजरीन आपको
जुकाम के बारे में बात कर रहे थे
हम दोनों को, नजला जुकाम हुआ हुआ है जी। नाजरीन आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं और आपको फौरन वक्त ज़ाया किए बगैर ले जाते हैं नई दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर डॉक्टर अतिया निशात साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हम गोश्त के नुकसान और उनके फवायद के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अतिया साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम
डॉक्टर साहिबा, पिछले हफ्ते हमने बात की थी गोश्त के कुछ फवायद के बारे में, इस हफ्ते हम कुछ नुकसानात की तरफ आते हैं। गोश्त के मुमकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं?
देखिए बजाते खुद गोश्त कोई नुकसानदेह गज़ा नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उसे एक मखसूस मकदार में इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि साइंटिस्ट भी कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको कभी भी 90 ग्राम अगर हर रोज़ खाना है तो 90 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाएं हम, और अगर हम इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें यानी इस चीज़ को एक्सीड नहीं करें तो कभी भी गोश्त नुकसान नहीं करता। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि 90 ग्राम तक रिस्ट्रिक्ट करना गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल है, और इसकी वजह से कुछ लोगों में, हमेशा ज़रूरी नहीं है सब में ये नुकसानदेह साबित हो, बट कुछ लोगों में देखा गया है कि उनके अंदर टेंडेंसी होती है यूरिक एसिड, एक एक्चुअली मैं शुरू से बताऊँ कि गोश्त में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्यूरिन, जब वो हजम होता है जिसमें तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं यूरिक एसिड। तो कुछ लोगों में ये इंक्लिनेशन होता है, टेंडेंसी होती है कि उनका यूरिक एसिड उनके जिस्म के जोड़ों में जाके एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और उस डिजीज एक मर्ज हो जाता है जिसको हम कहते हैं गाउट, और उसमें जोड़ों में शदीद दर्द होता है, सूजन हो जाती है, सुर्खी हो जाती है, और ये बहुत ही तकलीफदेह कंडीशन है, और अक्सर लोग इसको गठिया समझते हैं और दूसरे दूसरे इलाजात करते रहे इलाज वगैरह करते रहते हैं और कभी भी ध्यान नहीं देते कि ये गोश्त के ज़्यादा खाने की वजह से हो रहा है। तो ये ख़ास बात कि गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल या बिना सोचे समझे इस्तेमाल में ये है कि इसमें यूरिक एसिड बढ़ सकता है जिससे गाउट की परेशानी हो सकती है। और दूसरा नुकसान गोश्त का जो सबसे अहम है यूरिक एसिड से भी ज़्यादा, वो है कोलेस्ट्रॉल। गोश्त में जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है फूड का, चाहे वो दूध और अंडा भी क्यों ना हो, चाहे गोश्त ना भी हो, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़रूर होता है जो कि हमारी आर्टरीज में, खासकर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, वो आर्टरीज जो हमारे दिल को खून पहुँचाती हैं उसको हम मखसूस कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें जाके वो इकट्ठा होता है और जिससे वो ब्लॉक हो सकती है आर्टरीज, उसमें पहले फैटी स्ट्रिक बनता है, प्लाक बन जाता है और एंड में बिल्कुल भी खून की सप्लाई एकदम से रुक सकती है, जिसमें जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये दो खास चीजें हैं जिससे मतलब गोश्त के जो साइड इफेक्ट्स हम कह सकते हैं वो ये हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो मसला होता है वो ये है कि हम लोग बग़ैर अपनी बीमारी देखे हुए आराम से खाते हैं। वैसे आपने 90 ग्राम की बात कही, वो 90 ग्राम हर दफ़ा खाते हैं हम लोग, यानी मैं इसमें भी हम लोग कोई परहेज़ वरहेज़ का कोई सवाल ही नहीं रहता। तो किन लोगों को परहेज़ करना चाहिए गोश्त से?
देखिए, सबसे पहले तो जो गाउट के मरीज हैं यानी जिनका यूरिक एसिड जिसमें ज्यादा है उन्हें परहेज करना चाहिए। और दूसरे एक खास बात यहाँ पर है कि 40 साल की उम्र के बाद, बल्कि अब तो 35 साल की उम्र के बाद हमें अपना एक लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जिसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गंदा बुरा कोलेस्ट्रॉल, इसको कम रखना है, उसकी मकदार कितनी है। और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके अपने गोश्त के इस्तेमाल में हमें उस तरीके से उसको रेगुलेट करना चाहिए कि अगर एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या गलत और वो बीमार करने वाला कोलेस्ट्रॉल हमारे जिसमें ज़्यादा है तो गोश्त के इस्तेमाल में कमी करनी चाहिए। और एक ख़ास बात ये कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी उनका पेट रेगुलर बेसिस पे साफ नहीं होता है, वो इस चीज पर जरूर ख्याल करें कि एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं कोलोन कैंसर, वो गोश्त के बहुत ज्यादा इस्तेमाल या गोश्त के इस्तेमाल से तो खैर क्या मतलब, जब वो गजा ऐसी लेते हैं जिसमें फाइबर कम हो यानी वो गोश्त ज्यादा खाएं और फल और सब्जी पर कम जोर दें तो कोलोन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो जो लोग मुसलसल कॉन्स्टिपेशन में मुबतला रहते हैं उन्हें एक बार इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो एक अपना गोश्त थोड़ा सा कम करें और फल और सब्जी पर भी ज्यादा ध्यान दें।
डॉक्टर साहबा, यहाँ पे हमेशा सुना गया है कि हमेशा कहते हैं कि मछली सेहत के लिए अच्छी होती है और खाया करें, आया ये तो बात दुरुस्त है कि मछली सेहत के लिए अच्छी ही होती है, इसका कोई नुकसान भी है?
देखिए, मछली के फायदा इतना है कि उसका जिक्र कलाम पाक में भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी गजा समुद्र में रखी है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस कदर मुफीद गजा है। और मछली के बारे में खास बात आपको ये बता दूं कि जो लोग पोल्स में रहते हैं यानी जिन्हें हम एस्किमोज कहते हैं, उन्हें कभी भी आज तक कभी उनके ऊपर हार्ट अटैक तो बहुत दूर की बात है, एंजाइना पेन भी रजिस्टर नहीं किया गया है कभी किसी पोल पे रहने वाले इंसान को। ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मछली बेहद मुफीद और दिल के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छी है। और एक तहकीक में ये भी पता चला है कि अगर हम मुसलसल जैसे हफ्ते में 3 दिन मुसलसल 2-4 साल तक मछली इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ अल्जाइमर जो कि भूलने की एक खास बीमारी होती है, डिजेनरेटिव डिजीज होती है जो बढ़ती उम्र में भी होती है, और अगर हम अच्छी गजा एंटीऑक्सीडेंट रिच गजा नहीं लेते तो 30-35-40 साल से भी शुरू हो सकती है। ना सिर्फ अल्जाइमर का प्रोग्रेशन रुक जाता है, मतलब वो अगर है तो उसका बढ़ना रुक जाता है, बल्कि कभी-कभी किसी किस
जी नाज़रीन, हमारा रब्ता शायद मुनक़ता हो गया है।
जी
बहरहाल यहाँ पे भी जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि यहाँ पे बादल वादल हैं तो उसकी वजह से सैटेलाइट प्रॉब्लम
जी
हो जाती है, तो उसमें यानी कनेक्शन में
जी
प्रॉब्लम बाज़ वक़्त हो जाती है। तो
हम
बहरहाल
उनसे
शुक्रिया
इजाज़त
अदा करते
चाहेंगे
हैं। और
और
नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी हम आपकी खिदमत में रहेंगे।
जी
अभी 1-2 मिनट हैं हम लोगों के पास, तो एक तो हम ये बताते चलें कि अगले हफ्ते का मौजू इस हवाले से है कि बाज़ लोग सोचते हैं कि वाकई हम लोगों की किस्मत कितनी बुरी है
जी
कि सुबह को उठ के आना पड़ता है और यहाँ पर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करना होता है। लेकिन हम लोग अगर यानी बाज़ लोग हो सकता है ये सोचें हम लोगों के बारे में, लेकिन ये हम खुशकिस्मती समझते हैं
बिल्कुल
उसको। तो किस्मत के बारे में हम इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते गुफ्तगू
जी,
करेंगे।
कि कितने आप
और
पशेमान हैं, नहीं हैं, या आपको कितनी खुशी है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, इस बारे में हमें जरूर बताइए
क्या वाकई आप इसके कायल भी हैं कि
जी।
किस्मत अच्छी चीज़ होती है नहीं होती,
या
किस्मत
बहुत
के आप
से
कायल हैं या
जी
नहीं?
बिल्कुल ऐसे एक सवाल जो था कि आप किस्मत पे बिलीव रखते भी हैं या नहीं, बहुत से
हाँ
लोग होते हैं बहुत मानते ही नहीं है यानी
बिल्कुल
तकदीर या किस्मत वगैरह ऐसी चीज़ों को, लेकिन इस बारे में आप जरूर बताएं, बहुत खुशी होगी। हफ्ते के दिन जो हमारा जो दिन होता है वो लाइफ स्टाइल या तर्ज ज़िंदगी का होता है, तो इंशाल्लाह डॉक्टर सुलेल फातिमा साहिबा हमारे साथ होंगी जी। और आज हमारा हुर्रियत पसंदी और आज़ादी का भी आखिरी दिन है, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए नाज़रीन कि आज़ादी का ख़ास ख्याल रखिए आप। और
ऐसा
इस
हुर्रियत पसंदी का आखिरी दिन नहीं है,
नहीं इस मौजू
बल्कि
का
इस
जो था
मौजू के बारे में हम लोग आखिरी दिन गुफ्तगू कर रहे थे आज।
जी
तो इंशाल्लाह इस हवाले से अगर आज भी आप कुछ कहना चाहें तो यकीनन हम लोग उसके
बिल्कुल।
मुंतजर रहेंगे, या अगले हफ्ते के
और
मौजू
नाज़रीन
के
इस बात का
हवाले से
खास
इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग तब्दीली देखेंगे फेसबुक के
इंशाल्लाह
हवाले से। और डॉक्टर अतिया निषाद के
जी।
बारे में क्या कह रहे हैं हमारे साथी?
नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर हो आपकी कोई भी नज़रात हो, कोई नए जो आप तआवुन करना चाहें हमारे साथ, बस का खास ख्याल रखें कि हमें बहुत बहुत खुशी होगी। और नाज़रीन इस दुआ के साथ प्रोग्राम का जो है हम इख्तिताम करते हैं कि जो आपकी मुस्कुराहट है जो प्रोग्राम के शुरू में शुरू हुई थी, पूरे दिन बनी रहे, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम रिज़्क़ हलाल कमा
और
सकें।
मुहर्रम अल हराम के अय्याम चल रहे हैं, आखिर
जय
में हम लोग सलाम भेजते हैं अब आबदिल्ला पर। अस्सलाम वालेकुम या
अस्सलामु
अब
अलैकुम।
आबदिल्ला।
हाँ जी।